कैसी गजब की सर्दी पड़ रही है। मेरा तो लगता है खून रगों ही में जम जाएगा। इतना मोटा कंबल ओढ़ा हुआ है, इसके बावजूद भी लगता है कि ये सर्दी तो मेरी हड्डियों ही में उतर कर दम लेगी। बाबा जाहिर, ये आतिशदान में जरा लकड़ियां तो डाल दें, काफी सर्दी हो रही है।
अभी डाल देता हूँ बेटा। डॉक्टर साहब, बाहर बर्फबारी शुरू हो चुकी है।
हाँ, मैंने भी सर्दी से इस बात का अंदाजा लगा लिया था। खैर, आप छोड़ें इस मामले को और एक बात तो बताएं। आपको यहाँ आए हुए 6 माह हो चुके हैं और पिछले 2 माह से यहाँ सर्दियाँ भी हैं और बर्फबारी भी खूब हो रही है, मगर आप आज भी बर्फबारी हो जाने पर ऐसे खुश हो जाते हैं जैसे पहली बार देख रहे हैं।
बस डॉक्टर साहब, हम तो ठहरे सहरा के रहने वाले, जिस तरफ देखो रेत के छोटे बड़े टीले, खुले आसमान के नीचे ना साया था और ना कोई और जरिया कि जिसकी वजह से गर्मी से बचा जा सके। और दोपहर के वक्त जब सूरज ठीक आसमान के दरमियान होता था तो यूं महसूस होता था गोया आग बरस रही है। तो फिर आप खुद ही सोचिए कि ऐसे ठंडे और बर्फीले मौसम से हमारा दिल कहाँ भरेगा।
हाँ, बात तो आप भी ठीक कह रहे हैं,
लेकिन डॉक्टर साहब एक बात मेरी समझ में नहीं आई।
वो क्या?
वो ये कि चलो हम तो ठहरे परदेसी, यहाँ के मौसम के आदि होने में अभी वक्त लगेगा, लेकिन आप तो यहीं पैदा हुए हैं और मुलाजमत भी पास के कस्बे में ही करते हैं।
मैं आपका मतलब नहीं समझा।
मेरा मतलब यह है कि ये मौसम आपके लिए अजनबी तो नहीं, मगर मैंने अक्सर आपको देखा है कि ऐसे बर्फीले मौसम में आप कुछ सोचते रहते हैं और आपके कमरे की बत्ती भी जलती रहती है।
हाँ, आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। वो वाकया ही कुछ ऐसा है कि कई साल गुजरने के बावजूद भी मेरे जहन में बिल्कुल ताज़ा है, और जब भी इस तरह का मौसम आता है मेरी आंखों के सामने वो तमाम वाकयात घूमने लगते हैं।
डॉक्टर साहब, अगर आप बुरा ना मनाएं तो मैं वो कहानी सुनना चाहूँगा।
अच्छा, चले ठीक है, आज इस वाकये की याद में मैं अकेला नहीं हूँ, बल्कि आप भी मेरे साथ होंगे।
ये उन दिनों की बात है जब कस्बे के हॉस्पिटल में बतौर न्यूरो सर्जन मुझे कुछ ही अर्सा हुआ था। वो सर्दियों की एक ऐसी ही रात थी, तारीख और बर्फीली, जब मुझे फोन की घंटी बजती हुई महसूस हुई।
सलाम अलैकुम।
वालेकुम सलाम डॉक्टर वेस, माफ कीजिएगा मैंने आपको इतनी रात गए बेआराम किया, मगर क्या करूँ, एक इमरजेंसी है। यहाँ नजदीक इस दिन की बारिश एक बस का हादसा पेश आ गया है।
ओहो, ज्यादा नुकसान तो नहीं हुआ?
नहीं नहीं डॉक्टर वेस, ना तो ज्यादा नुकसान हुआ है ना मुसाफिरों गहरी चोटें आई हैं, मगर बस के ड्राइवर का खासा खून बह गया है और उसके ऑपरेशन के लिए मैंने सर्जन जाहिद को भी फोन कर दिया, और बस के ड्राइवर के साथ ही बैठे हुए एक बच्चे के सर पर गहरी चोटें आई हैं और शीशे कुछ टुकड़े भी उसके सर में पेवस्त हो गए। मैंने ड्रेसिंग तो कर दी है लेकिन खून रुकने का नाम नहीं ले रहा है और इसे दिमाग को भी नुकसान पहुंचा है।
बस तुम फिक्र ना करो, मैं थोड़ी देर में पहुंचता हूं।
देखो डॉक्टर वेस, इस शहर में तुम एक ही न्यूरो सर्जन हो, लिहाजा फौरन हॉस्पिटल पहुंचो, देर मत करना, लड़की की हालत बहुत नाजुक है।
मैं थोड़ी देर में पहुंचता हूं।
डॉक्टर ओवेस ने फौरन मफलर को कानों पर लपेटा और चाबियां उठाकर जो ही बाहर की जानिब लपके तो सामने ही अपने वालिद को खड़े पाया। उनके वालिद ने फौरन सवाल किया,
बेटा इस वक्त इतनी जल्दी में कहां जा रहे हो और अभी किसका फोन आया था?
वो अबू हॉस्पिटल में एक इमरजेंसी केस हैंडल करने जाना है।
बेटा ठीक है, तुम एक सर्जन हो, लोगों का इलाज करते हो। हमने इसीलिए तुम्हें डॉक्टर बनाया था, मगर तुम जानते हो कि सुबह से वक्फे वक्फे से बारिश हो रही है और शाम को बर्फ भी पड़ी थी। है भी पहाड़ी इलाका, सड़कों पर फिसलन होगी और धुंध भी छाई हुई है। खुदा न खासा कोई हादसा ना हो जाए। ऐसा करो, तुम सुबह चले जाना।
अब्बू, बात दरअसल ये है कि एक बस को शदीद हादसा पेश आया है और एक बच्चे के सर पर गहरे जख्म लगे हैं और सर में शीशे के टुकड़े भी लगे हैं। इसका जल्द अज जल्द ऑपरेशन होना जरूरी है।
अच्छा, तो फिर तुम फौरन रवाना हो जाओ, मगर गाड़ी एहतियात से चलाना। फी अमानिल्लाह।
नामालूम वो बच्चा कैसे तड़प रहा होगा और कितना जख्मी होगा। उफ, एक तो बर्फ इतनी ज्यादा पड़ रही है कि मैं गाड़ी को तेज चला भी नहीं सकता। ना जाने मैं उस बच्चे की जिंदगी बचाने का सबक बन भी सकूंगा या नहीं।
अरे, ये सड़क पर इतना बड़ा पत्थर कहाँ से आया? शायद किसी चट्टान से टूटकर गिरा है। अब तो मुझे गाड़ी रोकना ही पड़ेगी। ये इतना बड़ा पत्थर तो नहीं, अगर मैं कोशिश करूं तो इसे रास्ते से हटा सकता हूं। शुक्र है, अब मुझे फौरन हॉस्पिटल जाना चाहिए।
ये सोचकर डॉक्टर ओवेस फौरन गाड़ी की तरफ बढ़े और दरवाजा खोलकर जूं अंदर बैठने लगे, अचानक एक सख्त और ठंडी पिस्तौल की नाल उसकी गर्दन से आ लगी।
कोई चालाकी मत दिखाना वरना मारे जाओगे।
क्योंकि कौन हो तुम और क्या चाहते हो? देखो, अगर तुम कोई डाकू हो तो मेरी जेबों से रुपए निकाल लो और मुझे जाने दो। मैं एक डॉक्टर हूँ और एक इमरजेंसी पर जा रहा हूँ।
खामोश रहो, मुझे लगता है तुम्हारी जुबान बंद करनी ही पड़ेगी। चलो सड़क से एक तरफ हो जाओ, सबसे पहले तुम्हें बांधना पड़ेगा, इसलिए कि हो सकता है तुम पुलिस स्टेशन पहुंच जाओ और मेरे लिए परेशानी का बायस बनो। सुबह तक ये कार अपने सही मकाम पर पहुंच जाएगी।
मैं तुमसे वादा करता हूँ।
खामोश हो जाओ, ज्यादा बातें करने की कोशिश ना करो। अगर रात को मजीद बर्फ ना और तुम बर्फ में दबने से बच गए तो कोई ना कोई तुमको आकर खोल देगा, समझे?
ये कहकर उस डाकू ने उनको बांध दिया और गाड़ी की तरफ चला गया।
ओह, अब क्या होगा? काश ये गाड़ी चोर मुझे बांध कर ना जाता तो मैं पैदल भी हॉस्पिटल तक पहुंच जाता और शायद मैं उस बच्चे की जान बचाने में कामयाब हो जाता।
कुछ देर तक डॉक्टर ओवेस वहीं खामोशी से बैठे रहे कि शायद कोई राहगीर उस जानिब से गुजरे और उन्हें खोल दे, लेकिन काफी देर इंतजार के बाद भी कोई शख्स वहां से ना गुजरा तो डॉक्टर ओवेस के जहन में ख्याल आया,
अगर मैं यूं ही हाथ पर हाथ धरे बैठा रहा तो ठंडा घी से मर जाऊंगा। क्यों ना कोशिश करके खुद से इन लड़कियों का कोई बंदोबस्त करूं। इसके लिए मुझे सबसे पहले किसी तेज धार वाले नोकीले पत्थर का इंतखाब करना पड़ेगा।
ये सोचकर डॉक्टर ओवेस ने इधर उधर नजरें दौड़ाई तो सामने ही एक नोकीली चट्टान नजर आई।
अरे, ये चट्टान मुझे जरूर इन रस्सियों के काटने में मदद दे सकती है। अब मुझे जरूर इसकी तरफ घिसट कर चलना होगा। अब मुझे रस्सियों को चट्टान के साथ रगड़ना होगा और इस कोशिश में यकीनन मेरे हाथ भी जख्मी हो जाएंगे।
चुनाचे डॉक्टर ओवेस ने अपने हाथों पर बंधी रस्सी को उसके साथ रगड़ना शुरू कर दिया। काफी देर तक रगड़ने के बाद भी जब रस्सी न कटी और हाथ भी जख्मी हो गए तो उन्हें मायूसी होने लगी, लेकिन अचानक उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि रस्सी का एक हिस्सा कट चुका है।
ये रस्सी तो शायद कट चुकी है। अब मुझे फौरी तौर पर नस्तियों से आजादी हासिल करके हॉस्पिटल की तरफ जाना चाहिए। या अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने मुझे नस्तियों से आजाद कर दिया, वरना न जाने इस वीराने में कब मौत आती और कैसी खतरनाक मौत होती। उफ खुदाया, मैं तो उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकता। खैर मुझे आगे चलना चाहिए। तकरीबन 2:15 या 2:30 बजे मुझे डॉक्टर रमीज का फोन आया था। सख्त सर्दी के बावजूद भी मैं घर से निकल पड़ा था और अब वो मेरा शिद्दत से इंतजार कर रहे होंगे। कम से कम बड़ी शहरा तक तो पहुंच ही गया हूं। अब इंशाल्लाह मुझे कोई लिफ्ट मिल ही जाएगी। अरे ये सामने जो रोशनी है, गालिबन कोई गाड़ी आ रही है। अरे भाई रोको भाई, ये लोग तो शायद मुझे कोई चोर या उचक्का समझे हैं। या अल्लाह तू ही मदद फरमा। अरे ये फिर कोई गाड़ी आ रही है, ये तो कोई ट्रक मालूम हो रहा है। भाईजान, भाई ट्रक वाले।
क्या बात है भाई?
वो दरअसल मेरे साथ एक हादसा पेश आ गया था और चोर मेरी गाड़ी लेकर भाग गए। और
अच्छा आप अंदर तो आइए, बस ये बातें बाद में होंगी।
आपका बहुत बहुत शुक्रिया जनाब।
ट्रक में बैठकर डॉक्टर उवेस ने मुख्तसरन अपनी तमाम कहानी उसे सुना दी। जब वो कहानी सुन चुका तो बोला,
साहब हम आपका अस्पताल टूर कर आए हैं।
तो फिर फौरन चलिए, मैं आपको रास्ता बताता रहता हूँ।
ठीक है, हम तुमको जरूर अस्पताल पहुँचाएगा। मुसलमान की मदद नहीं करेगा तो कौन करेगा।
ट्रक हॉस्पिटल पहुंचा तो डॉक्टर उवेस बोले,
भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
नहीं साहब, इसमें शुक्रिया की क्या बात है, ये तो हमारा फर्ज था।
आप आए ना मेरे साथ कुछ।
नहीं साहब, हमको अपने काम पर भी पहुंचना है।
डॉक्टर उवेस तेजी से ट्रक से उतरकर हॉस्पिटल पहुंचे। अचानक ही सामने से डॉक्टर रमीज आते दिखाई दिए।
डॉक्टर उवेस, आपने आने में बहुत ताखीर कर दी, वो बच्चा 1 घंटे पहले एड़ियां रगड़ रगड़ कर मर गया।
अरे नहीं, ये क्या कह रहे हैं आप?
अचानक डॉक्टर रमीज की तवज्जो उनके हुलिये पर पड़ी। बिखरे बाल, हाथों में खराशें और गंदे कपड़े देखकर वो फौरन बोल पड़े,
डॉक्टर उवेस खैरियत तो है, ये आपने अपना क्या हाल बनाया हुआ है?
डॉक्टर रमीज के सवाल पर उन्होंने तमाम बीती कहानी सुना दी।
ओहो, बहुत अफसोस हुआ। आप अंदर आराम करें, मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ।
इस बच्चे के साथ इसका कोई रिश्तेदार भी था या अकेला ही था?
हाँ, उसके साथ उसकी वालदा थी। इसकी हालत बच्चे को देखकर बहुत खराब हो गई थी, बड़ी मुश्किल से उसे हमने नींद के इंजेक्शन देकर सुलाया है।
इसके रिश्तेदार वगैरह भी कोई पहुंचे हैं या नहीं?
नहीं, अभी तक तो कोई नहीं पहुंचा। अलबत्ता उस औरत के पर्स से कुछ फोन नंबर मिले थे, हमने तमाम नंबरों पर इत्तला दे दी है। ऐसा करो, अब तुम आराम करो और पट्टी करवा लो, मैं दोबारा आऊंगा तो तुम्हें साथ ले जाकर बच्चा भी दिखला दूंगा।
ठीक 7 बजे डॉक्टर रमीज डॉक्टर उवेस के कमरे में दाखिल हुए।
उवेस तुम नाश्ता कर लो, फिर बच्चे को देख लेना। उसके वालिद ही पहुंच चुके हैं और जारो कतार रो रहे हैं। शादी 11 साल में उनकी वाहिद औलाद थी।
मैं फौरन उससे मिलना चाहूंगा।
सही है, चलो।
ये कहते ही वो दोनों चलते हुए वार्ड में पहुंचे तो देखा कि एक शख्स एक खूबसूरत 8 साला बच्चे की पट्टी से सर लगाए रो रहा था। आहट की आवाज सुनकर उसने जूं ही सर उठाया तो डॉक्टर उवेस को यूं महसूस हुआ गोया उनके सर पर बिजलियां गिर पड़ी। उन्हें अपना सर घूमता हुआ महसूस हुआ और ऐसा लगा कि जैसे सारा कमरा खून से भर गया हो, इसलिए कि ये वही शख्स था जिसने डॉक्टर ओवेस से कार छीनी।
बच्चों, इसीलिए कहा जाता है जैसी करनी वैसी बढ़नी। अल्लाह हम सबको अच्छे अच्छे काम करने और बुरे कामों से बचने की तौफीक अता फरमाए।